नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्षेत्र में हवाई संपर्क से तेज और व्यापक विकास होता है। आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह में एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत में लगभग 70 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास कई हवाई अड्डों का भी विकास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कोटा हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा।
कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है। राजस्थान में विकास के कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में कई दशकों से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मांग थी और अब ये सपना साकार हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए हर संभव उपाय किए हैं। इनमें सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं का उत्थान भी शामिल है। आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नवे अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि संथाली संस्कृति और परंपराएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी हैं। राष्ट्रपति ने आज पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान सिलीगुड़ी में नवे अंतर्राष्ट्रीय संथाल आदिवासी सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देशभर में अतिक्रमण और घुसपैठ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। उन्होंने ये बात हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। श्री शाह ने राज्य के लिए 1,100 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए।
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई, 2028 में कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के उत्थान का आकलन उसकी शक्ति के आधार पर किया जाएगा, न कि दूसरे देशों की गलतियों के आधार पर। नई दिल्ली में रायसीना संवाद में हिंद महासागर का भविष्य विषय पर उन्होंने कहा कि भारत के अभ्युदय की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने किसी भी व्यापार समझौते में हितधारकों की संवेदनशीलता से समझौता नहीं किया है। नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2026 के तीसरे और अंतिम दिन श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने सभी व्यापार समझौतों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है और इससे व्यापक सहयोग के द्वार खुले हैं। नेपाल में 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से अब तक 55 के अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं। शेष स्थानों पर मतगणना जारी है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 76 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के लोगों को चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण संचालन पर बधाई दी है। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के 8वें दिन भी स्थिति तनावपूर्ण है। अमरीका, इसराइल और ईरान ने हवाई और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 15 करोड़ डॉलर से अधिक के हथियार बेचने को मंजूरी दी है। आज तड़के ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर हवाई हमले हुए। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के हवाई हमलों में अब तक 1,332 लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।